नवरात्रा में रामायण शुरू करते हैं तो नवरात्रा की तिथि कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो कैसे रामायण पूरी करनी चाहिए? अपने तो नौ दिन में ही पूरी करनी है, कटे चाहे बढ़े, और आरंभ में नवरात्र लगते ही शुरू कर देनी चाहिए, इसी रीति से करनी है। दूसरी बात करते हैं कि कोई स्त्री छोटी उम्र में विधवा हो जाए और वो गलत काम करती है तो उससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए। देखो मुख्य बात बतावें, सत्संग भजन ध्यान करते रहने से काम ठीक होता है, विशेष सुधार होता है सत्संग से। असली सत्संग जब मिल जाता है मनुष्य का छुटकारा होता है, परंतु उसके खुद के छुटकारा पाने की इच्छा होने से लाभ होता है, और खुद की अगर नियत नहीं हो तो सत्संग मिलने पर भी लाभ नहीं होता। भूख नहीं लगती, उसको बढ़िया से बढ़िया भोजन दिए जाए तो भी उसका रस नहीं बनता। ऐसे सत्संग जिसकी अपने कल्याण की इच्छा नहीं है, अपने उद्धार की इच्छा नहीं है, ऐसे भाई हो चाहे बहन हो, वो खराब रस्ते पड़ जाती है तो वो छोड़ती नहीं, ये छूटना बड़ा मुश्किल होता है। और खुद का विचार हो जाए और सत्संग मिल जाए तो जरूर सुधार होता है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु भीतर मेरा कल्याण हो जाए ये इच्छा जोरदार चाहिए, ये इच्छा जोरदार न होने से सत्संग अच्छी तो लगती है, सत्संग करते भी है, परंतु कुछ ये जो काम है ना, विधवा की बात बताई, ये काम बड़ा टेढ़ा है। अपनी असली परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, ये जोरदार लगन न लगने पर इसका सुधार होना कठिन है। पहले सुधार हो जाए तो हो जाए, खराब लत पड़ जाए पीछे उसका सुधरना बहुत खराब चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। ऐसे सूरवीर बहुत कम होते हैं जो रस्ते पड़कर खराब रास्ते में जाकर के संभल करके ठीक रास्ते पर आ जाए, ऐसे कम होते हैं। भाइयों में बहनों में सब जगह ऐसी बात है। तो भाई ये तो पहले से ही ख्याल रखो, माता पिता है उधर ससुराल वाले हैं, दोनों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सियो रक्षा विशेषता, स्त्रियों की विशेषता से रक्षा करनी चाहिए। बाल्यावस्था में माँ बाप करे, जवान अवस्था में पति करे, और वृद्धावस्था में बेटा करे। ऐसी बात देखिए मनु जी ने, स्त्री को न स्वातंत्र में रहती, वो अकेली न फिरे, अपने मर्जी मुताबिक काम न करे तो उसका सुधार होता है, और खराब रास्ते पड़ जाती है और फिर वो स्वतंत्र हो जाती है, नहीं मान सकती। उसकी नियत बिना कितना ही आप प्रबंध करो सुधार नहीं होता। ये बात हमने देखी है, हमने सुनी भी है और प्रत्यक्ष भी देखा है, नहीं होता सुधार। स्वयं के सुधार की इच्छा होने से ही सुधार होता है। जब तक स्वयं को ज्ञानी नहीं होगी सुधार नहीं होगा, ज्ञानी नहीं हो तब तक सुधार नहीं होगा। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि अच्छा विचार रखो, अपना विचार पक्का रखो, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करो, पक्के रहो तो ठीक होगा, नहीं तो दूसरा कोई कर नहीं सकता। सत्संग से सहायता बहुत मिलती है, बहुत मिलती है। हमारे पर तो एक बहुत विशेषता से असर है सत्संग का, उससे शास्त्रों का। अच्छे पुरुष अनुभव मिल जाते हैं, उनके संग से बहुत लाभ होता है। थोड़ी इच्छा अपनी हो तो उनके संग से बड़ा सहारा मिलता है, बड़ी मदद मिलती है, बड़ा लाभ मिलता है। और ऐसे पुरुष अच्छे सच्चे ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी, उद्योगी, शास्त्र के विद्वान, ऐसे पुरुष न मिले तो फिर ऐसे पुरुषों की पुस्तकों के पढ़ने से भी बड़ा लाभ होता है। पर मूल में अपने कल्याण की इच्छा वो होती है, उन पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। हमें तो लाभ हुआ है भाई, सत्संग से लाभ हुआ है और पुस्तकों से बहुत लाभ हुआ है। और पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। मेरी तो ऐसी लगन है कि अच्छे अच्छे पुरुष हो, उनका संग होने से बहुत विशेष लाभ होता है। मैं तो यहां तक कह देता हूँ कि एक भजन ध्यान करके ऊंची स्थिति को प्राप्त होता है और एक सत्संग में जाकर के अच्छी स्थिति को प्राप्त होता है। तो अपने भजन ज्ञान से जो बड़ा साधक बनता है वो अपने कमाकर धन से धनी बनता है, और अच्छे पुरुषों का सत्संग मिल जाता है तो वो गोद चला जाता है, उसको जोर नहीं पड़ता है, स्वतः स्वाभाविक उसकी रक्षा होती है और आगामी उन्नति होती है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे पुरुष न मिले तो सच्ची लगन से 80 पुस्तकें पढ़ी जाए, उनसे बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। परंतु हरेक की दृष्टि नहीं है, हम क्या करें, वो तो बात अलग है। हम तो इतनी कह सकते हैं, मेरे खुद की देखी हुई बात, की हुई बात, आजमाइश की हुई बात, पक्की बात है, बहुत लाभ होता है। परंतु अपना लाभ स्वयं करना चाहे सच्ची लगन से तो, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। आजकल के जमाने में कठिनता ज्यादा है, कुसंग ज्यादा मिलता है। नारायण 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 नारायण। आज सुबह प्रसंग चला था, कल मैंने प्राप्त और पुरुषार्थ की बात कही थी, थोड़ी कही, बातें बहुत है इसमें। साधक संजीवनी के 18वें अध्याय में 12वां श्लोक है, उस पर कर्मों के विषय में विवेचन किया है। अगर उचित समझे तो भाई बहन उसको देखें। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें टीका में प्रारब्ध क्या करता है, पुरुषार्थ क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है, इसका विवेचन काफी मात्रा में किया है। पूरा तो नहीं कह सकते, परंतु शंका समाधान किया है और वो समाधान हो सकता है, उसको पढ़े। मनुष्यों के एक धारणा बनी हुई है, उसका सुधार करना बहुत आवश्यक है, जिसमें व्यापारी वर्ग के तो विशेषता से बात बैठी हुई है कि झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात करने से धन पैदा होता है, सीधी रीति से धन पैदा नहीं होता। एक बात ये बैठ गई भीतर, ये बात सच्ची नहीं है, परंतु मेरी बात कौन सुने। वे समझते हैं कि स्वामी तो समझते नहीं, तो भाई समझता तो मैं नहीं हूं पूरा, कैसे ठेका ले लूं। परंतु इस विषय का मेरे अध्ययन जरूर है, इस विषय की मैंने पढ़ाई की है, इस विषय में मैंने प्रश्नोत्तर किए हैं, अच्छे अच्छे वेद जानकारी में अच्छे जानकार संत महात्माओं से मैंने इस विषय में प्रश्नोत्तर किए हैं और इस विषय को मैंने जाना है और उसमें मेरी शौक है, रुचि है। धनात्मक जो प्राप्त होती है वस्तुएं, वो उसमें प्रारब्ध की प्रधानता है, साथ गौण में पुरुषार्थ है, प्रधानता प्रारब्ध की है। भाग्यम फल सर्वत्र न तो विद्या न तो पौरुषम, सब जगह भाग्य फलित तो होता है, पुरुषार्थ और विद्या इतना काम नहीं करती, ये सहारा करती, परंतु मुख्य तो भाग्य होता है। भाग्य कहते हैं प्रारब्ध को, प्रारब्ध कहते हैं भाग्य को, जैसे लिखा है वैसे होगा, ये प्रारब्ध की बात है। प्रारब्ध के अनुसार हमारे को सुख सुविधा दुख सुविधा आदि मिलती है। यहाँ जो हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, हमारे अगाड़ी सामने परिस्थिति आती है, उसमें प्रायः प्रारब्ध का ही हाथ होता है, वर्तमान का बहुत कम प्रारब्ध का हाथ होता है, तो प्रारब्ध से धन मिलता है। इस विषय में भाई लोग थोड़ा ध्यान दे करके वैसे समझे और फिर अपने शंका रह जाए तो फिर पूछे। इस विषय को ठीक जानना है ऐसा भाव रख करके और आप सुने बातें और उनको समझें और शंकाओं को नोट कर ले, मौका मिलने पर पूछें। अब वो बात मैं शुरू करता हूं। हमारे पास क्या उपाय है और हम क्या चाहते हैं, दो चीज हम चाहते क्या है और उस चाहना की पूर्ति के लिए उपाय क्या है, दो बात है। तो चाहना में हमारे चार चीज होती है, एक तो धन चाहते हैं, एक सुख सुविधा भोग चाहते हैं, एक धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं और एक हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। इन चारों बातों के सिवाय कोई बात नहीं है। मान आदर सत्कार बड़ाई ये सब इनके अंतर्गत आ जाते हैं, चारों बातों के कि भोगों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें एक एक विषय बड़ा विचित्र विचित्र विषय है, परंतु संक्षेप में मैं बात कहता हूं। तो चार बात हम चाहते हैं, इसको चार पुरुषार्थ करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ऐसे नाम है शास्त्र में, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ नाम धन का है, वे धन के कई भेद होते हैं, मुख्य दो भेद है, एक स्थावर और एक जंगम, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि, ये जंगम धन है, रुपये पैसे सोना चांदी आदि की स्थावर धन है। और एक धन चाहते हैं, एक सुख चाहते हैं, सुख भोग भी रहे हमारे को, ये दो चीज अलग अलग है। धन बहुत है परंतु वो सुख नहीं भोग सकता, और पास में कौड़ी भी नहीं है परंतु सुख से रहता है, आराम से रहता है, ऐसी बात है। और धन है और आराम से रहता है, और निर्धन है और आराम से रहता है, धनी है और तंगी रहती है पैसे की, धनी आदमी के घाटा रहता है पैसों का, तंगी रहती है पैसों की, वस्तुओं की बहुत तंगी रहती है, दुख पाते हैं, सुख नहीं भोग सकते हैं। सुख भोगने का प्रारब्ध है, उनके धन होने पर भी सुख भोगते हैं, धन न होने पर भी सुख भोगते हैं, ये प्रारब्ध का खेल है, ऐसी बात है मूल में। और धर्म का अनुष्ठान हम चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो धर्म की जगह पाप कर सकते हैं, उल्टा रास्ता लग सकते हैं। पर पाप और पुण्य ये नया काम करना है, नया है। और सुख और दुख, धनी और निर्धन बनना है, इसमें प्रार्थना की प्रधानता है। ऐसे ही अपना कल्याण करना, अपने पतन करना, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है। अपना कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है। और इसमें मैंने कई कई बातें नए ढंग से पढ़ी है, सुनी है, विशेषता से। अधिकार बताते हैं अलग अलग, ये मुक्ति का अधिकारी होता है, ये अमुक शास्त्र का अधिकारी होता है, ऐसे अधिकारी बताए गए हैं। ये बातें भी मैंने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, कही है। इसके सिवाय मैंने बातें सुनी है कि मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार उसको मिल गया। मनुष्य मात्र धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, सुखी हो, दुखी हो, परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हरेक अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति वो कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। ऐसी बात मैंने सुनी है और पढ़ी है और इस पर विचार किया है और मेरे निर्णय भी है, निश्चय भी है। आप लोग पूछें तो मेरी परीक्षा भी दे सकते हैं, कहीं फेल हो जाओ तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने फेल होने पर भी मेरे दुख नहीं होता है, मेरे को ज्ञान मिलता है, मेरे प्रकाश मिलता है। कल्याण की बात तो चार बात बताई, अर्थ में और भोग में तो प्राग्ध की प्रधानता, और धर्म का अनुष्ठान और कल्याण करने में पुरुषार्थ की प्रधानता। इसे उल्टा धनी और निर्धन बनना है और भोगी और दरिद्री बनना है, दुखी बनना है और पाप करना है और पतन में जाना है, इसमें भी स्वतंत्र है। कल्याण भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं, अन्याय नरकों में जा सकते हैं, धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं, पाप का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, ये करने में स्वतंत्र है। इस वास्ते पाप करना नहीं चाहिए, शुभ काम करना चाहिए। इसमें अगर सहायक है तो सत्संग सहायक है, अच्छे काम में जाने में सत्संग बहुत लाभदायक है। हमारे तो कुछ बचपन से ये बात जची हुई है कि सत्संग से लाभ होता है, तो होता है, तो हुआ है, मैंने देखा है। इस बात के जो मेरे संदेह नहीं है, अच्छा संग मिलना कठिन है, अच्छा संत अच्छे मिल जाए इसमें दुर्लभता है। मैंने भी इधर उधर भटक भटका करके देखा है तो ये चीज बहुत दुर्लभ है। अच्छा संग अगर मिल जाए तो उसका उद्धार होना बहुत सुगम है, बहुत सरल है, सुगमता से हो जाता है। जैसे गोद जाने वाले को कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, आप साफ धनी बन जाता है, ऐसे अच्छे महात्मा मिल जाए तो उसका साधन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत अच्छा बन सकता है। खुद की नियत तो चाहिए ही, पर नियत चाहने पर भी उनका उद्धार सुधार बहुत सुगमता से हो जाता है। अच्छा सत्संग नारायण मिलना दुर्लभ होता है, सत्संग बड़ा दुर्लभ है। ये कथा बहुत सी सुनते हैं, व्याख्यान बहुत से सुनते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, परंतु असली जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, जल्दी उद्धार कैसे हो, ऐसी बातें ठीक बताने वाले बहुत कम आदमी है। व्याख्यान देने वालों का भी ऐसा भाव बहुत कम होता है कि सबका उद्धार हो जाए, इस रीति से ही वे कह जाए, कम कहते हैं। धन के लिए, संपत्ति के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, वाह वाह के लिए और कहा करते हैं। और ये मान बढ़ाई आदि की ये भोग बड़ा विचित्र है। त्याग में तो कनक कामने का त्याग भीतर से, ये त्याग कठिन है। पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, इसका त्याग भीतर से बहुत कठिन है। रुपये पैसों का त्याग उतना कठिन नहीं है, दोनों ही कठिन है। कनक कामने माधुरी से मिलना कैसे हो, सबल बैरी बसे घट भीतर, कनक कामनी दोय। माधव जी से मिलना कैसे हो, तो ये दो बैरी है। जिसमें भी पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, इसका त्याग करना, भीतर से त्याग करना कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु विचार कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बहनों तो पक्का विचार कर रहे तो बहुत जल्दी ये कर सकती है उद्धार। बहनों माताओं में पुरुषों की अपेक्षा विशेष सूरवीरता है, पर वो काम में लावे तब, नहीं तो नहीं है। ऐसी बात है, कई बात देखी हुई, वो बताता हूं मैं, केवल पुस्तकों की नहीं है। तो अर्थ और धर्म है, अर्थ और भोग है, ये में पुरुषार्थ की प्रधानता है, मिलता है प्रारब्ध से, पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ साथ है। मान बढ़ाई की दुर्लभता है, मान बढ़ाई की बहुत दुर्लभता है। बढ़ाई का त्याग कर देना, मान का त्याग कर देना, इनमें दोनों में कठिन, बढ़ाई का त्याग और मुश्किल होता है। मान तो चाहते हैं जीते जी, बढ़ाई जीते जी चाहते हैं, मरने के बाद भी बढ़ाई चाहते हैं। ऐसा काम कर जाए, ऐसी पुस्तकें लिख जाए, इतना स्मारक बना जाए, इसलिए हमारे बढ़ाई रह जाए, नाम हमारा रह जाए, लोग याद करें। मारवाड़ी कहा गए गीतड़ा भींदड़ा, कहा तो पुस्तक बनाओ नहीं तो मकान बनाओ, जिसे तुम्हारा नाम होगा लोग याद करेंगे। ये गीतदार भीतरा वो है, इसे मान बढ़ाई हो जाए, बढ़ाई तो बढ़ाई इतनी गहरी है कि मरने के बाद भी चाहते हैं कि हमारा लोग जस गावे, कीर्तन करे, लोग हमारे नाम को समझे, हमारा नाम अमर रह जाए, सीख हो जाए। ऐसे शास्त्रों में बातें ऐसी आती है, नाम जब तक संसार में प्रसिद्ध रहता है तब तक वो स्वर्ग में रहता है, ऐसी बात आई। हम तो इसको ज्यादा नहीं मानते, मान बढ़ाई हो जाए। अब नाम तो रावण का भी होगा, हिरण्याक्ष का होगा, नरकासुर का होगा, महान महान दुष्टों का भी हो जाता है, तो उसमें सूर्य स्वर्ग में चले जाते हैं। पर पुस्तकों में आता अच्छी महिमा होती है, वो रहती है तो स्वर्ग में जाता है, ऐसी बात आती है। मतलब अच्छा काम करते हैं, अच्छा नाम रहता है तो स्वर्ग में जाएगा ही, इसमें कहना ही क्या है। पर नाम गिरी से जाते हैं, ऐसी शास्त्र में बात आती है, हमारे तो कम जस्ती है। कई पुस्तकों में ऐसी बातें विशेष विशेष आती है, हमने देखा है, सुना है, संतों के प्रश्नोत्तर किया है, उनसे हमारे बातें बहुत सच्ची जची हुई बातें कही है, निसार ठीक ठीक तरह से निर्णय किया हुआ है। इस वास्ते संदेह बहुत कम होता है, नहीं होता है संदेह उसमें, क्योंकि मैंने वर्षों से इसमें मेहनत की है, पुस्तक भी पढ़ी है, संतों से मिला हूँ, प्रश्नोत्तर भी किए हैं, और जिज्ञासा रही है, और फिर जिज्ञासा है अब भी कि जीव का कल्याण जल्दी और सुगमता से कैसे हो, ये मेरे धुन जची हुई है। एक इस वास्ते मैं इस विषय में अगड़ी बढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। तो कल्याण की इच्छा हो जाए तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता, ये बात कहता हूँ। ये हरेक जगह बात नहीं आती है, बहुत कम जगह पढ़ने में सुनने में आती है कि हरेक आदमी का कल्याण हो सकता है। पुण्यात्मा हो, भजन ध्यान करे, उसका हो सकता है, और दुष्ट आत्मा है उसका नहीं हो सकता। परंतु इतिहासों से और शास्त्रों से मालूम है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी को तत्व ज्ञान हो सकता है, दुराचारी से दुराचारी भगवान का भक्त बन सकता है, उसका पक्का विचार हो जाए तो कोई मना करने वाला नहीं है। मनुष्य मात्र को ये अधिकार है, मनुष्य मात्र में ऐसी योग्यता है, मनुष्य मात्र को अधिकार है, मनुष्य मात्र में इस विषय का बल है। ध्यान दिया ना, अधिकार है, योग्यता है, और उसमें ये बल है। परमात्मा की प्राप्ति में कोई निर्बल नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, मनुष्य मात्र में कितना ही पापी क्यों न हो। गीता माया अभिषेक सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से भजन करता है तो भगवान के साधु रेवा सब अंतव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। तो महाराज दुराचार ये साधु कैसे माने? क्या सम्यक दोष जो उसने पक्का निश्चय कर लिया कब मेरे को इस मार्ग में चलना है, ऐसा निश्चय करने के साथ भगवान उसको धर्मात्मा कह देते हैं कि धर्मात्मा हो गया। हाँ तो बहुत आचरण तो अच्छा नहीं हुआ है। क्या क्षिप्रम बोली धर्मात्मा? वो बहुत जल्दी धर्मात्मा थे। क्षिप्रम इसका नाम है, क्षिप्रम चुटकी बजा थी। क्षिप्रम आरम्भ ध्रुतम शीघ्रम, ये बढ़ियावाचक शब्द है। तो जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। और सशुद्ध शांति और शाश्वती शांति जिनको बढ़कर शांति के आ जाए उससे अगर कोई शांति नहीं, ऐसी शांति को प्राप्त कर सकता है मनुष्य। भाई हो चाहे बहन हो, इसमें मतभेद है। कई कहते हैं पुरुष का कल्याण होता है, स्त्री का नहीं होता। परंतु मैंने जो गीता आदि देखा, स्त्री हो वेशस्था सूर्यस्य भी अंति परांगतिम, गीता के देखने से मालूम होता है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहते हैं उनका कल्याण हो जाता। जिसमें कल्याण शूद्रों का स्त्रियों का कल्याण जल्दी होता है। युग में भी सतयुग त्रेता द्वापर की अपेक्षा कलयुग में कल्याण में जल्दी होता है। कल्याण में और शूद्रों का और स्त्रियों का इनका कल्याण बहुत जल्दी होता है, सुगमता से होता है। ऐसा पद्म पुराण में विष्णु पुराण में ऐसा दिखाया है। तो ये बात है, कल्याण के लिए कोई भी निराश न हो। संसार में धनी बन जाना हाथ की बात नहीं है, पर भजनानंदी बन जाना, त्यागी बन जाना, वृद्ध बन जाना, भगवान का भक्त बन जाना दुर्लभ बात नहीं है, सबके अधिकार है। जो सच्चे हृदय से होगा हो जाएगा। वो बड़े बड़े दुराचारी, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हत्यारे, मनुष्यों की हत्या करने वाले, ऐसे ऐसे भी भगवान के भक्त बन गए। किसी के पाप बन जाए तो पश्चाताप न करे, अब चेत करो, अब होश में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। और कल्याण के मरने के बाद हो जाएगा ये बात भी ठीक है। परंतु वास्तव में हम तो ये उधार नहीं करते कि पर फिर कल्याण हो जाएगा। अभी हो, अभी अभी किसी समय मेरे को तो ऐसी ऐसी बातें मिली है कि कोई मनुष्य चाहे तो बहुत जल्दी अपना परिवर्तन कर सकता है, बहुत सुगमता से परमात्मा की तरफ चल सकता है। भाई हो चाहे बहन हो, सच्ची नगर भीतर की हो असली, तो उसको ऐसी ऐसी बातें है। मैं बताता भी हूँ, मैंने सुनी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और कुछ कुछ करके देखा भी है। तो इस तरह से कल्याण होने में कोई संदेह की बात नहीं है। तो अपने जो सत्संग का समारोह है, ये सत्संग का समारोह केवल कल्याण की प्रधानता है। उद्धार कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, ये जीवन मुक्त कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, ये सब उद्धार के अंतर है, कल्याण के अंतर के भी सब बात है। तो इसमें मनुष्य मात्र अधिकारी है और निर्बल नहीं है, सबल है। उद्योग करे मन की चाह ना विशेषता हो जाती। इसमें उद्योग बाहर के पुरुषार्थ की इतनी प्रधानता नहीं है जितनी प्रधानता भीतर के भाव की है। जैसे मीराबाई ने कहा, हे लिमारी हरि बिना रहो रे न जाय, बिना भगवान के नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मन नहीं लगता, बात नहीं सुहाती, कोई संसार काम सुहाता नहीं, केवल भगवान की बात ही सुहाती है। ऐसी अगर चटपटी लगे तो बहुत जल्दी काम होता, बहुत जल्दी। अनंत वर्षों में अनंत जन्मों में कल्याण हो, वो थोड़े दिनों में कल्याण हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान दयालु है और भगवान के भीतर जीव मात्र के कल्याण की एक लगन है भगवान के। परंतु जो चाहे उसको वो मिलती है, हरेक को मिलती नहीं। और असली लगन है, सुगमता से कल्याण हो जाता है। परंतु जो कल्याण चाहता है उसको पता है, कल्याण पक्का नहीं चाहते उसकी कल्याण नहीं होती है। शास्त्रों में भी बात आती है, बड़ी कठिन बात है, बड़ी दुर्लभ बात है, परंतु शास्त्रों में दोनों बातें आती है, दुर्लभ का बात आती है और सुलभ का भी आती है। गीता में आती दोनों, नमाम दुष्कृतम गुड़ा प्रबद्धंते नराधमा माया प्रतिज्ञा आश्रम भाव आश्रिता, मेरे शरण नहीं होते दुष्कृति पापी मेरे पर नहीं होते। और ये शान पंथ गुम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, जिनका पाप नष्ट हुआ है ऐसे पुण्य कर्म है वे मेरे भजन में लगते हैं, ऐसा भी आता है। और अभिषेक शुक्राचारो भक्ति की बात में आई है, ये बात ज्ञान के विषय में। अभिषेक जैसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत तम सर्वेभ्य पापेभ्य संपूर्ण पापियों से, और पाप कृत तम पापकृत पापकृतर और पापकृतम ऐसा कहा, अत्यंत पापी हो तो वो भी भगवान का भक्त तत्व ज्ञान हो सकता है, उसको तत्व ज्ञान हो सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। मनुष्य शरीर मिल गया तो उसको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार मिल गया, इसको बड़ा भारी पद मिल गया है। स्वास्थ्य आया है कि जो ऐसे शरीर को प्राप्त करके अपना उद्धार नहीं करता, तम आरूढ़च्युतम बिलु, उसको आरूढ़च्युत कहते हैं, चढ़ करके गिर गया ऊपर, परम पद को प्राप्त करके नीचे गिरता है, भागवत में आया ऐसा। पतन चलो अनादर से उसमें दंग गया, आपके चरणों का अनादर करने वाला आरूढ़ कृष्ण परम पद, बड़े कठिन से परम पद है वहां से भी गिर जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय न रहने से, तो भगवान के चरणों का आश्रय ले और आश्रय लेकर अपना काम करे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चले तो बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए। कृपा का भरोसा रखे, अपनी जान में जिसको पाप समझते हैं, अन्याय समझते हैं शास्त्र की दृष्टि से और लोक की दृष्टि से, उन कामों को छोड़ दे। पाप कर्म अन्याय कर्म है, उनका त्याग करना पड़ेगा हर हालत में, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, पाप करना छोड़ दे। और पाप करता रहेगा तो जल्दी सुधार नहीं होगा। एक मार्मिक बात बताऊं कि थोड़ा साधन भी करते हैं, थोड़ा भजन ध्यान भी करते हैं और थोड़ा पाप भी कर लेते हैं, तो पाप का अंश थोड़ा भी रहेगा तो वो कल्याण बाधक हो जाएगा। कुछ पाप और कुछ पुण्य तो सबके होते, कोई ऐसा आदमी कसाई भी नहीं मिलेगा, बड़ा भारी कसाई जानवरों को मारने वाला भी नहीं मिलेगा कि जिसमें पाप ही पाप और पुण्य न हो, ऐसा नहीं मिलेगा। पाप और पुण्य दोनों रहते हैं, केवल साधन रहे पारमार्थिक बात रहे, पाप न रहे, ऐसे का नाम ही साधक है। पाप करते हैं साधन करते हैं वो साधक नहीं होते, पाप पुण्य का रिश्ते होते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। केवल परमात्मा की तरफ चलना है, पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे, ये अगर पक्का विचार हो जाए उसका रास्ता बहुत सुगमता से तय होता है और बड़ा सत्संग अच्छा मिलता है, और सत्संग से लाभ भी वो विशेष उठाता है जिसने विचार किया है कि अब पाप नहीं करेगा। भगवान ने यही कहा, सम्यक व्यवस्थित हो निश्चय पक्का कर लिया, उस पक्के निश्चय के ऊपर भगवान उसको संत कहते हैं, साधु जिस मंत्र तो साधु मानो, किस बात पर मानो, मरा अभिषेक सुदूराचार है कहते हो जी सम्यक व्यवस्थित, निश्चय पक्का कर लिया कि अब परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, हमें इस जन्म में और कुछ नहीं करना है, ऐसा पक्का विचार करे उसको साधु मानो। अभी साधु नहीं है, आचरण भी पूरे सुधरे नहीं है, परंतु विचार पक्का है तो कोई विक्रम यह चोट कथन से धनो सर्वम ही सन्निवेश, भगवान की चरणों का आश्रय रखता है और पाप करना चाहता नहीं, नियत नहीं है किसी कारण से, कुसंग के कारण से, पूर्व की आदत के कारण से कोई विक्रम हो जाए तो धनोद सर्वम ने भगवान हृदय में विराजमान है, वो सब पापों को दूर कर देते हैं, सुगमता से उसका कल्याण हो जाता है। हृदय की चाहना चाहिए, उद्देश्य लक्ष्य अपना परमात्मा की प्राप्ति का हो, तो लक्ष्य हो जाने पर जिज्ञासु भी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, परमात्मा तत्व का जिज्ञासु हो जाता है तो भी शब्दों को, शब्द ब्रह्म जो वेद है उनको अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में कहे हुए जितने सकाम कर्म है और उनके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ब्रह्म पद तक की प्राप्ति, ब्रह्म लोक तक की प्राप्ति जाते हैं, ऐसे ऐसे बातों से भी वो ऊंचा उठ जाता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोक तक के लोट करके आते हैं, मामुपेत कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान के शरण होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्म लोक आदि है, उनके अधिकारी होने पर कल्याण नहीं होता। अगर सच्ची लालसा हो जाए कल्याण की तो मामूली आदि का कल्याण हो जाता है, पढ़े बिना, बिना पढ़े, बिना योग्यता के, बिना अच्छे आचरण वाले, ऐसे के भी लगन लग जाए भगवान की, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान भाव देखते हैं, पहले के आचरण भगवान को याद नहीं रहे। रहते न प्रभु जित चूक किए की, कर तो सुरत सोवार ये की, पहले कितनी चूक करी है, गलती करी है, तो भगवान को याद ही नहीं रहती। करो कि उसका जब भाव शुद्ध हो जाएगा, महाराज हो गया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब ऐसा पक्का विचार होते ही भगवान की दया होती है, सब पापों कर्मों को सब स्थगित कर देते हैं कि भाई उसका दंड मत दो, इसको नरकों मत भेजो, 84 लाख से मत भेजो, इसकी नियत है मेरी प्राप्ति करने की, इस बात से भगवान छूट करा देते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान की कृपा से इसमें संदेह नहीं, परंतु लगन अपनी खुद की चाहिए, खुद की लगन के लिए नहीं होता। सत्संग के द्वारा बड़ा बल मिलता है, पर बल मिलता उसी को जिसके भीतर में लगन होती है। वर्षा बरसती है, जमीन भी अच्छी है, परंतु वर्षा बरस में बीज जैसा होता है वैसा ही पौधा होता है। आम के वर्षा बरसने से आम के फल लगते मीठे, और बबूल के लंबी लंबी सुलें लगती है। जमीन अच्छी होती, लंबी सूड़ होती है, वो होता है जिसको जमीन मदद कर देती है, खाद मदद कर देती है, वर्षा मदद कर देती है, पर बीज जैसा हो वैसा वो बढ़ेगा। ऐसे हृदय की लालसा जैसी होगी उसी अनुसार होगा। वो लालसा अगर परमात्मा की प्राप्ति की है तो सुगमता से कल्याण हो जाएगा। अब पीछे उसी विषय पर आ जाता हूँ कि चार चीज हम चाहते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। उपाय हमारे पास दो है, एक है प्रारब्ध और एक है पुरुषार्थ। पुराने किए हुए कर्मों का जो फल मिलता है, उस फल देने के उन्मुख हुए कर्म विभाग का नाम है प्रारब्ध। अनंत जन्मों के कर्म हमारे संचित पड़े हुए हैं, उन संचित में से जितने फल भोगने के लिए प्रस्तुत कर दिए जाते कर्म, उस कर्म विभाग का नाम है प्रारब्ध। उसका फल मिलेगा अनुकूलता प्रतिकूलता। ये तो कर्मों की बात है, परंतु कल मैंने एक बात कही थी, इसके सिवाय एक बात और है, वो फिर आज कह देता हूँ। वो क्या है कि अनुकूलता प्रतिकूलता तो पूर्व कर्मों का फल है, परंतु सजग साधक प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को भी साधन सामग्री मानना चाहिए, अनुकूल से अनुकूल सामग्री और साधन सामग्री माना चाहिए। मनुष्य मिल गया, अब अनुकूलता मिली है तो साधन सामग्री है, और बड़ी प्रतिकूलता है भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र परिवार प्रतिकूल हमारे चलते हैं, तो प्रतिकूल चलते हैं तो मुक्ति में तो बड़ी सहायता करने वाले हैं। ये घर वाले जितने के अनुकूल ज्यादा होते हैं तो उसमें बाधा लगती है। साधु हो गए, इनके बाबा जी महाराज महाराज के लंबे लंबे हाथ जोड़े, वहां से डरना चाहिए, ये खतरे की चीज है, डेंजर है, खतरे की चीज है, यहाँ खतरा है भाई, सावधान रहो। ऐसे ही कुटुम्बी सब अनुकूल है, बेटा पोता सब आजीव अनुकूल है, तो वहां डरना चाहिए, सावधान विशेष रहो, नहीं तो ये डुबोएंगे कहीं कहीं, ये धोखा देंगे। और अनुकूल नहीं है तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। कहते हैं आजकल के छोरा कहना नहीं मानते, तो छोरों ने बड़ी भारी कृपा कर दी है, भगवान की आप पर कृपा हो गई है, परिवार में आप वाले सन्न सन्न आपके सहायक नहीं बनते, सेवक नहीं बनते हैं, ये भगवान की कृपा है, नहीं तो फंस जाओगे महाराज, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छे अच्छे साधु ये सेवा करने वाले बापसी महाराज 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 करने वालों के फंदे में फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। सेवा करने वालों से बचना मुश्किल है, और जो द्वेष करते हैं आपको दुख देते हैं कष्ट देते हैं, वे तो बड़ी भारी कृपा कर रहे हैं, पुराने पाप तो नष्ट कर दे और नया फर्ज नहीं देते, वे बड़े सहायक है, बहुत ही सहायक है, परंतु ये बात समझ में नहीं आती। हम चाहते हैं सुख, यही गलती होती है, जो सुख चाहते हैं, सुख सुविधा नहीं चाहे, चाहे हम तो भगवान को परमात्मा को चाहते हैं, ये अगर हम सुधार कर रहे तो दुख देने वाले हमारे बड़ी सहायता करने वाले होते हैं, बड़ी रक्षा करने वाले होते हैं, हमारा कल्याण करने में बड़े सहायक होते हैं। ये जितने अपने सेवक होते हैं अच्छे, ये फायदेमंद नहीं है, हम लोग साधु है वो चाहते हैं कि आदर करे, सत्कार करे, दान पुण्य करे, हमारा सुख पहुंचा, लगता अच्छा है, पर तो है खतरा, इसमें कल्याण होने में बड़ी बाधा लगती है। ये अनुकूल है, जितना बाधा देते हैं उतने प्रतिकूल बाधा नहीं देते, हमारे भय देखने वाले, दुख देने वाले हमारे कल्याण में बाधा नहीं करते, कल्याण में सहायक होते, सहायता करने वाले होते। इस वास्ते अनुकूल प्रतिकूल सामग्री जो हमारे को मिलती है ये केवल परमात्मा प्राप्ति के साधन सामग्री है, उस प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है ये, इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसा विचार करिए प्रण कर सब। तो धन की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में प्राप्ति की प्रधानता मानी है। क्यों मानी है? ये प्रत्यक्ष बात है, आप इतने बैठे हो, इनमें भाई बहनों में कोई इसको पूछे कि किसी के नियम है कि इतना रुपया रोजाना कमाएंगे, रुपया दो रुपया आठ आना चौने भी कोई विचार कर ले कि चार आना तो रोजाना पैदा कर ही लेना है, ऐसा नियम क्यों नहीं लेते? पांच रुपयों का नियम, दस रुपयों का, बीस रुपयों का नियम ले लो कि रोजाना बीस रुपया पैदा करेंगे। कहते हाथ की बात नहीं, यही तो हम कहते धन की प्राप्ति में हाथ की बात नहीं है, कोई नियम दिलाता नहीं, कोई नियम लेता भी नहीं कितना धन कमाएंगे। ऐसा भोग भोगने के लिए भी कोई कहे हम तो ऐसा भोग भोगेंगे, इसमें हाथ की बात नहीं, बीमारी हो जाएगी क्या करोगे आप, नहीं भोग सकते। तो भोगों के भोगने में और धन के संग्रह में पुरुषार्थ अभी वर्तमान की प्रधानता नहीं है, इसमें प्रारंभ की प्रधानता है। एक लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी ये तो ऐसा स्वभाव था, घी में रोटी चूर करके दूध लेकर भीतर में और खाया करते, मेरे शौक थे। वो तो सुरा बोला कि शौक तो मेरे पिताजी को कम नहीं था, बट मिलती नहीं थी, क्या करें सब तो शौक तो उन्हें लगा लो मिल जाए, आधी बात जो भी है प्राप्त हो तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। शौक होने से क्या हो, रुचि होने से क्या हो, और परमात्मा की जब रुचि हो कोई बाधा दे नहीं सकता इसमें, इसमें सब स्वतंत्र है। परमात्मा तक चलने में, भोगों के भोगने में, रुपया इकट्ठा करने में स्वतंत्र नहीं है, इसमें प्रतंत्रता है। वो प्रतंत्रता कैसे मिटे तो लोग और समझे पाप करो, अन्याय करो, झूठ कपट करो, बेईमानी करो, धोखाबाजी करो, इनकम टैक्स चोरी करो, सेल टैक्स की चोरी करो, इससे धन हो जाएगा, ऐसी बहुतों की जची हुई बात है, बिल्कुल गलत है, परंतु मान नहीं सकते। मेरे को समझेंगे स्वामी जी समझते नहीं, ये भोग है इनको पता नहीं है, व्यापारी किया नहीं उनको क्या पता है, परंतु मैं व्यापार करने वालों के साथ रहा हूँ, मेरे साथ व्यापार करने वाले रहे हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, मेरे मित्र हैं, इस बात उनकी बातें होती मैं जानता हूँ। आप तो समझो स्वामी भोले है तो हम आश्चर्य भोले हो जाए, कोई अर्ज नहीं है, पर भोले होते हुए भी मेरे ये दृष्टि नहीं है कि झूठ कौट बेईमानी से धन पैदा हो जाएगा, क्यों चारों बातें देखी है, झूठ कपट बेईमानी करते हैं धनी बन गए, झूठ कपट करने में कोई कमी नहीं लगती, मन नहीं कटिपट नहीं पेट आता है, लज्जा निवारण करने के तो पूरा कपड़ा नहीं, एक पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं, और पाप कर निशिवास जाए रात दिन पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, जानवरों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ कपट करते हैं, ठगी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, परंतु काम चलता नहीं, बड़ी मुश्किल होती है। इस वास्ते अभी का कर्म है ये उन्हें फल नहीं, उन्हें प्रारब्ध की प्रधानता है, और परमात्मा की तरफ चलो तो सब माफ हो जाता है, भगवान उनके लिए बहुत कृपा करते हैं, उनकी सुविधा मिलती है, सत्संग मिलता है, अच्छे संतों से मिलान करा देते हैं भगवान। आजकल के जमाने में अच्छी बात मिलना कठिन होता है, परंतु जिसकी सच्ची लगन होती है भगवान कृपा करते हैं, उनको संत महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, उनका सत्संग मिल जाता है, सहायता मिल जाती है, वो स्वास्थ्य चाहते हैं तो उनकी बड़ी भारी मदद मिलती है, ऐसी बात होती है। करते हैं भगवान, परम दयालु है परमात्मा, रहते हैं प्रभु जी चौकी की याद नहीं रहती, भगवान के रहते भी पापा करता है याद नहीं रहती, और थोड़ा सा सद्भाव होता है बड़ा आदर करते हैं भगवान, विशेष महत्व देते हैं। इस बार जीव के कल्याण करने में भगवान की कृपा का सहारा लेकर आप साधन करो, जरा मार्ग मोक्ष आए माम आश्रित यत्न, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करो, देखो आपकी कितनी सफलता होती है, कितनी विचित्रता होती है, बड़ी अलौकिक विचित्रता उनके सामने आती है। सच्चे हृदय से चलने वालों की विचित्र बातें मैंने सुनी है, देखो मैं देखी है। आजकल के जमाने में ऐसे भाई बहन हुए। मथुरा में रहने वाली एक स्त्री थी, विधवा हो गई, सुंदर बहुत थी, तो उसके पीछे कई लोग पड़ गए। उसने तपा करके लोहा यहाँ सब जगह लगा दिया, रूप कुरूप हो गया, जान करके कि मेरा रूप सुंदर है इस वास्ते करे। ऐसे जिनकी सच्ची लगन होती है महाराज, वो उपाय सोच लेता है, न करने लायक काम कर बैठता। बिल्लू मंगल थे, वेश्या में आसक्त थे, उनके भी लगन लगी, तो महाराज वेश्या का तो संग छोड़ दिया और फिर गए अगारी। अगारी गए तो एक सुंदर स्त्री मिल गई, वो जल भर करके अपने घर जा रही थी, बहुत सुंदर दिखी और मन खींच गया। पहले भी ऐसे रहे, बेशक भी रहे, मन लग गया, तो उसे पीछे पीछे हो गए, पीछे पीछे हो गए। जब छोड़ कर गए, बेशक को छोड़ कर गए, तब भी बात करता हूं, वो घर के भीतर चली गई। उसने भीतर जाकर के कपाट बंद कर लिया, उसने समझ लिया कि उसकी नीयत खराब है। भीतर गई, बातें क्या बात है, पति ने पूछा तो कह दी बात, ऐसे महाराज है, ऐसी बात है। तो वो पति गया बाहर, जाकर उसने पूछे क्या बात है, कि भैया ये तेरी स्त्री का, हाँ मेरे मन में आती है, देखो इसको मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा मैं दिल देख करके जिस नेत्रों से ठीक तरह से देख लूं, इतनी मेरे बहुत मन में है, और हो न हो कोई परवाह नहीं करता, मैं देखने की मन में मेरे बहुत है। गया अपनी स्त्री को कहा कि चल बाहर, बिजाई भिक्षु गए, कहता मैं देखना चाहता हूँ, तेरे क्या बिगड़ता है, मैं कहता हूँ चलो। बड़ी पतिव्रता अच्छी थी, परंतु पति ने कहा कि चलो मेरे साथ, चली गई। ये सब देख लो, खूब देखा, अच्छी तरह से देखा, और मन में ग्लानी आई, स्त्री को छोड़ दिया, चिंतामणि बेशिया थी उसको मैंने छोड़ दिया, अब इसमें आकर फंस गया, दुख हुआ मन में। तो पास में था एक वृक्ष, बेल का, बेल के पत्ते होते हैं, उनमें कांटे होते हैं, गांठदार बड़े खराब, बेल के गांठे तोड़ कर दो मारी आंखों में, आंखें फूट गई, अब खून बहने लग गया। वो बेचारा कहते कहीं करते, क्या करते हो कि क्या कर दिया, आंखों ने आज धोखा दिया, सब छोड़कर, विषय को छोड़कर मैं भजन ध्यान में लगा, परंतु मेरे सुंदर रूप दिख गया, इस वास्ते मेरी दशा ये हुई, अब इन्हें आंखों से देखना नहीं है, खून बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, चल दिए वहां से भगवान का कीर्तन करते हुए, अब अभी सुन गए अगर वहां पर मना दर्शन लग गई, बीमार हो गए, अंधे हो गए, सेवा कौन करे। तो ठाकुर जी स्वयं सेवा करते हैं, योग सेवम भाव्यम प्रतिज्ञा, पथ ला कर देते हैं। तो सूरदास जी क्या लोगे, कि भैया दर्शन लग रही है, तो उनके साफ किए कपड़े, जल दिया, सफा कराया, फिर पथ ला कर दिया, ले मैं पथ देता हूँ, खा लो। खा लिया, खा तो लिया, पर तो मुश्किल होगी, वह छोरी की याद आवे बार बार, लड़का बड़ा अच्छा है, सुंदर बोलना बड़ा सुंदर है, सेवा करता है, उसकी चिंतन होने लग गया। दूसरे दिन आया, वो कह महाराज ले लोगे, ना भाई मैं नहीं करूंगा, वो अस्थियों के मुंह से फंसा, एक छोरे के मुंह में फंस गया, अब मैं तो नहीं करूंगा, ना ही खाऊंगा, नहीं करूंगा। तो तुम क्या चाहते हो, भैया क्या चाहता हूँ, अंधा हूँ मैं, वृंदावन जाना चाहता हूँ, भगवान के यहाँ धाम में चला जाऊं, क्यों भटकता करूं। ठाकुर जी जो देंगे जो खा लोगे, वृंदावन चाहता हूँ, तो लो लो लाठी पकड़ो, मैं अभी वृंदावन पहुंचा देता हूँ। लाठी पकड़ा दी, तो वो मेरे आगे आगे चले, थोड़ी देर गए, लो जंगल गए, आ गए। ये जो ये कीर्तन सुनता है ना, ये वृंदावन आ गया, अब तो पहुंच गए, ठीक है ना। तो देखा रे वृंदावन इतना जल्दी कैसे आ गया, और ये छोरा कौन है, लाठी देख, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा तो बिजली सी दौड़ गई, भीतर में विचित्र आनंद आया कि बात क्या है, कि ईश्वर मूल नहीं है। मैं तो समझा चोरे के मुंह में फंस गया, पर चोरा मामूली नहीं, पकड़ लिया तो छोड़ जाओगे सूरदास जी? छोड़ू नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा मैं, अब महाराज नहीं छोड़ूंगा मैं, दुख पाया आंखें फोड़ी सब कुछ किया तुम्हारे लिए, पकड़ा जोर से, ठाकुर ने झटका तट छोड़ा दिया। तो मां छुड़ाए जा तो निबल जान के मुंह हृदय से हरी जाओ तो वीर बनूंगा, तो आपको सूरवीर सब समझू, मेरे हृदय से निकल जाओ। बातें छुड़ा दी क्या हुआ, मैं अंधा निर्बल बीमार इसको छुड़ा दिया तो क्या अपनी सूरवीरता है? सूरवीरता तब हो मेरे हृदय से निकल जाओ, हृदय से निकल जाना भगवान के हाथ की बात नहीं, हृदय दिया मना सब कुछ छोड़ दिया, आंखें फोड़ दी केवल भगवान के लिए। अब भगवान छोड़ दे उन्हें कैसे छोड़ दे, तुम जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। भगवान ठाकुर जी ने दर्शन दिए, नेत्र दिए, और कि तुम्हारे को नेत्र दे दो कि ना महाराज नेत्र में नहीं सकता, नेत्र धोखा हुआ मेरे, नेत्र मिल सूर अंधे ही कर दो, अंधे ही रहे अपने भगवान के भक्त हो गए, बिल मंगल ब्राह्मण थे। बड़ी सुंदर कविता करी है उन्होंने, बड़ा अच्छा लिखा है। ऐसे महाराज भी बड़े विद्वान थे वो, तो भगवान ही वो रक्षा करते हैं, परंतु जो चाहते हैं रक्षा ये कहीं धोखा हो जाए तो उसे साफ से कर देते हैं। ये स्त्री और पुरुष दो का उदाहरण मैंने दिया, ऐसे महाराज सावधान होते हैं वो सावधान हो जाते हैं और पक्के रहते हैं, फिर धोखे में नहीं जाते, ऐसी बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको अधिकार है, सभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मुख्य बात है। तो इस विषय को तो भाई फिर याद ना हो तो फिर कहेंगे भाई थोड़ा सा कहा है, क्या कहा, समय इधर हो गया। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा मार्च शुक्ल नवमी एकम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 26 नवंबर 1990 को रात करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।